तीर्थंकरों की वाणी में चारों ही अनुयोगों द्वारा हमें उपदेश की प्राप्ति हुई है। उसमें से जो करणानुयोग है उसके आधार से हम जीवों की 20 प्ररूपणा देख रहे हैं। देखो अभी हमने जो मंगलाचरण कहा ना, उसमें अरिहंतों को, सिद्धों को, जिनवाणी को, मुनियों को नमस्कार किया है और उनके एक एक चरण में एक एक उनके गुणों का स्वरूप बताया है। अब इसको देखते हुए हम अपना जो प्रकरण आने वाला है, हमने प्राण की बात की थी, जीवों की 20 प्ररूपणा हमने देखी थी, याद है किसी को? हमने दो मेन डिवीजन किए थे, एक तो गुणस्थान और दूसरा मार्गणास्थान। मार्गणास्थान एक ग्रुप को हमने कह दिया, उसमें 14 तो मार्गणा होती है और अन्य 5 प्ररूपणा होती है। उनमें से जीव समास हमने देखा, पर्याप्ति, प्राण भी देख लिया। अब हम संज्ञा को देखेंगे और उपयोग नाम के और एक प्ररूपणा है, उसके पश्चात हम मार्गणाओं की भी चर्चा करेंगे। तो हमें ये बात ख्याल में लेनी है कि ये जो सारी संयोगों की अपेक्षा, जीवों के कषायों की अपेक्षा, कर्मों के उदय की अपेक्षा, ये जो सारी बातें यहाँ बताई जा रही है उनको जानकर, क्योंकि हमें तो सभी द्रव्यों को जानना है, उनकी कैसी परिणमन व्यवस्था है, वो क्यों टिके हुए हैं, ये सब बातें भी द्रव्यानुयोग में तो हम सीखेंगे ही। तो ऐसी जो वस्तु की व्यवस्था है, द्रव्यों की कायम रहते हुए कायम परिणमने की जो व्यवस्था है, उसके कारण की जो यहाँ चर्चा होगी और हो रही है, उस संबंधी अपना सही निर्णय होना आवश्यक है एक बार, क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति करना है। तो उसके लिए प्रथम में प्रथम क्या होना चाहिए? तो इस विश्व में 6 द्रव्य है तो वो उनका परिणमन कैसा चल रहा है, उनका कार्य यानी पर्याय कैसी हो रही है, कौन उसके कारण है, उसको भी जानना आवश्यक है। तो ये सारी बातें कहेगा क्यों कौन? क्योंकि हमें तो निमित्त से कार्य होता हुआ दिखाई देता है, हमें भासित होता है, तो इसका सच्चा उपदेश हमें जिनेंद्र भगवान ने दिया है। इसलिए हमें सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप क्या है, यानी ईश्वर किसे कहना, भगवान किसे कहना, उनका स्वरूप क्या है वो निश्चित करना चाहिए। यदि उनके स्वरूप में कोई गड़बड़ी होती है, जैसे हमने देखा है अरिहंत भगवान का है तो 18 दोषों से रहित है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, तो यदि उनके सर्वज्ञ के बारे में हमें कोई भ्रांति चलती होगी, उनके अंतरंग और बाह्यंग दोनों स्वरूपों के बारे में कोई भ्रांति चलती होगी तो हमारा भी वो निर्णय सही नहीं हो सकता। तो देव का स्वरूप, मुनियों का स्वरूप, सत शास्त्र का स्वरूप हमें निश्चित करना है, क्योंकि उनके उपदेश से हमें इस मार्ग की प्राप्ति होने वाली है। तो वो बताने वाले को हम सही नहीं जानेंगे तो किसी के भी पीछे लगेंगे, फिर उसमें अकल्याण अन्य का नहीं अपना है, उसमें बुरा किसका होगा, अपना होगा, उसका तो होगा नहीं। तो हमें सही मार्ग हमें मिल रहा है नहीं, इसके बारे में हमें ही सावधान होने की जरूरत है। तो ये सारे देखते हुए हम देखेंगे कि ये उपदेश प्राप्त होने पर भी सही निर्णय तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ, शुरू में तो ये तत्व पहले में पहले सुनने चाहिए, सुनकर उस पर विचार करने चाहिए और फिर सही निर्णय तक पहुंचना चाहिए। इतना ही करना है जीव को, अन्य कुछ नहीं करना। आप कहेंगे बाकी शुभ भाव करना है कि नहीं करना, उस भूमिका में जैसी जीव की जैसी योग्यता होती है उस प्रकार के परिणाम उसके सहज होते हैं। फिर भी हम कहेंगे इसने किया, एक कहने की पद्धति है, तो चाही वही वाली बात वहां नहीं रहती है, सहजता से वो बातें होती है। हमें तो अभी तो इतनी सावधानी रखने है कि हमें तत्व का उपदेश मिल रहा है तो हमें निर्णय में अधिक से अधिक अपना उपयोग, अपने ज्ञान उसमें लगाना है। एक ज्ञान में ही सारी बातें होने वाली है, तो हमारा उपयोग अन्यत्र कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है उसकी तो हम ही स्वयं उसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। ये हम अपना जो चैतन्य उपयोग कहाँ कहाँ लगा रहे हैं उसकी भी बात देखेंगे ना थोड़ी। अभी आज हम यहाँ 138 यानी आपकी कौन सा पृष्ठ है, जहाँ 17 नंबर का चैप्टर चालू हो जाता है, 136 संज्ञा प्ररूपणा जो है और अन्य कुछ मार्गणाएं हम देखेंगे यहाँ। देखो थोड़ा सा विषय चेतना उपयोग के बारे में है, जिसको ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना कहते हैं, है तो द्रव्यानुयोग के ये सिद्धांत, उसकी चर्चा निकली है तो उसके संबंध में विचार करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक में है और जब आप पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में कोई शंका, कोई कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको लेकर हम आगे पढ़ेंगे। देखो एक सेकंड पैराग्राफ है ना, या पहले से देखेंगे। हमने गत पत्र में देखा था कि जीव का चैतन्य व्यापार, चैतन्य व्यापार यानी जानना जानना जानना, ये कार्य, यह उसका भाव प्राण है। कल हमने वहां प्राणों की चर्चा की थी ना, एक इंद्रिय आदि के प्राण कितने होते हैं, भाव प्राण तो हमेशा जीव कहने, उसका जानने का कार्य ही उसका भाव प्राण है। इस प्राण की परवाह किए बिना हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन से सुख की ओर आशा भरी निगाहें लगाए बैठे हैं, इस बात का विचार करने की भी किसी को फुर्सत नहीं। हम जो कोई सुबह से रात तक जो कोई हमारे प्रयत्न चलते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, बिना विचार के कर रहे। एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा है इसलिए तीसरा भागता है, इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही क्योंकि पुस्तक तो मैंने इंडिया में लिखी है ना, वहाँ की बात कर रही
हूँ। कितने साल हुए?
हाँ कितने साल हुए देख लेना, अभी कब लिखा था वो। बेटे तुम्हारे दादाजी ने बहुत पहले से हम सबको पैसों का व्यवस्थित हिसाब लिखने की आदत डाली थी, वह परंपरा आज भी हमने कायम रखी है और तुम्हें भी बचपन से शिक्षा दी है। पैसे कहीं बिना वजह खर्च तो नहीं होते, इस बाबत में हम सावधान रहते, सब कुछ हम देखते ना, अरे बराबर, यानी भले खर्चा करो मगर वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जा रहा इसका विचार रखो, इतना हम देखते नहीं हिसाब रखो। अब क्या दूसरी बात क्या है, नल से पानी बिना वजह बहता जाता हो, पानी की बर्बादी होती हो तो हम सावधानी पूर्वक नल बंद करते, ऐसे खुला छोड़ दिया तो हम, अरे क्यों खुला छोड़ा, कुछ दो तो नहीं रहे, बंद कर देते। पंखे चल रहे हैं ऊपर जाते समय बंद करके जाते कि नहीं? यहाँ पैसे और पानी का मूल्य हमारी समझ में आता है, परंतु अपने प्राणों की कीमत अर्थात चैतन्य का मूल्य हम अभी तक समझे नहीं है। एक हमारा ज्ञान जो है, तो ज्ञान हम स्वयं जानने वाले हैं, और ये ज्ञान कहाँ लगा है? पूरी दुनिया को जानने में। क्यों? पर में। अब पर को जानने का निषेध नहीं है, परंतु जिसने अपने को तो जाना ही नहीं है, और सारे दुनिया को जानने में इसका ज्ञान लगा है। देखो हमारे पास कितना ज्ञान है, बहुत छोटा है। पहले हमने वो इसका भी देखा ना, मैग्नीफाइंग का, जैसे केवल ज्ञानी के पास अनंत ज्ञान है और लगाया एक में, और हमारे पास ज्ञान है अल्प, हमने लगाया अनंत में। तो इस ज्ञान को क्या करना, जैसे पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद तवे पर गिरती है तो क्या होता है, गर्म तवे पर बाफ होगी, नष्ट हो जाती है, और फिर समुद्र में गिरी तो समुद्र बन जाती है, और कमल के पत्ते पर गिरी तो चमकती है, और वो छीप में गिरी तो मोती बन जाती है। तो कहाँ गिरी है, कहाँ लगी है, वैसे हमारा ज्ञान कहाँ लगता है, विषयों में लगाया तो नष्ट हो जाता है, वही स्वाध्याय में लगाएंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, फिर भी वो स्वाध्याय में लगा उतना कार्यकारी नहीं है। तो कहाँ लगाना है, तो अपने में, परंतु अपने में लगाने के लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ही वो ज्ञान का जो स्वयं जानने वाला है, उसी को तो जानना है, तो जानने वाले हम स्वयं हैं, और ज्ञान की पर्याय हर समय चल रही है। क्यों? ज्ञान हमारा गुण है ना, तो हमारे में से कब नष्ट होने वाला है? तो ज्ञान जानने वाले भी हम हैं, और ज्ञान हमारा गुण है, तो उसकी पर्याय उसमें होती ही है हर समय। तो हमें किसको ढूंढना है अभी? हम स्वयं है ना, यानी अभी हमें किसी अन्य चीज की जरूरी है कि नहीं है, गरज है कि नहीं है, जरूरियात जिसको कहते हैं, क्योंकि हम स्वयं है जिसको जानना है, और जानने का साधन है ज्ञान की पर्याय, वो भी हमारी अपनी है। पर को जानना है, पर का कुछ करना है, तो कुछ तो हमें सोचना चाहिए, पर हम स्वयं है और जानने वाले भी हम स्वयं है, ज्ञान की पर्याय भी हमारी है। तो ये सबसे सुलभ बात है, हमने उसको सबसे कठिन समझ लिया। तो हम देखते हैं उसकी ये जो चैतन्य की बात है, देखो अपना चैतन्य उपयोग हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा, इसकी सावधानी की तो बात ये पढ़ा था हमने, उस संबंधी विचार भी हमारे मन में स्पर्श नहीं करता। अब ये जो चेतना है ना, ज्ञान का व्यापार, जानन रूप जीव की पर्याय, तो उसके तीन प्रकार से शास्त्र में उसका कथन आता है। एक है कर्म फल चेतना, क्या कहा? कर्म फल चेतना। कर्म का अर्थ हम जानते हैं आठ कर्म, ज्ञानावरण आदि जो आठ कर्म है, उसका जो कोई फल मिलता है, ज्ञानावरण में जो कोई ज्ञान की हीनता होती है, मोहिनी के उदय में श्रद्धा की विपरीतता होती है वगैरह, राग द्वेष होते हैं, इसको कहेंगे कर्म फल। और चेतना का अर्थ क्या है? जानना, केवल उसको जानना इतना नहीं लेना, अपने को उस रूप अनुभव करना, उस रूप फील करना। कर्म का फल, यहां हम तो मोहिनी की बात करेंगे, तो मोहिनी के उदय में क्या हो रहा है, जीव को राग द्वेष हो रहा है, हम राग द्वेष की बात करेंगे आसान समझाने के लिए, क्रोध हो रहा है, तो अपने को कैसा फील कर रहे हैं, मैं क्रोधी हूं, मुझमें क्रोध हो रहा है, ये जानना अलग बात है, और अपने को क्रोधी ही अनुभव करना अलग बात है। तो अपने को कैसा अनुभव कर रहे हैं, मैं क्रोधी हूं, मैं पुण्यवान हूं, पुण्य करने वाला वो मैं हूं, ऐसा अपने को फील कर, तो मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं ज्ञान हूं, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। ज्ञानी के अज्ञानी में क्या फर्क है? अज्ञानी अपने को किस रूप अनुभव कर रहा है? मैं क्रोधी हूं, मैं बहुत दयालु हूं, और ज्ञानी कैसे अनुभव करता है, मैं तो ज्ञानमय हूँ और मुझमें ये दया के परिणाम आ रहे हैं, उसमें जो भिन्नता है ना वो जानता है। हमने तीन बातें देखी थी, एक तो ज्ञान, एक तो राग द्वेष के परिणाम और एक शरीर की क्रिया। अज्ञानी इन सबको इकट्ठा कर देता है और ज्ञानी तीन को भिन्न भिन्न जानता है, ये ज्ञानी अज्ञानी की पहचान।
तो हर एक बात में ये भेद विज्ञान करने से क्या कर्तृत्व बुद्धि नहीं आएगी, इसलिए करना चाहिए?
हाँ, करना चाहिए नहीं, ऐसे जब हम तत्व पहचानेंगे तो ये क्या है, ये शरीर की क्रिया है, या अभी हमारे क्या हो रहा है कि उसमें उसके बारे में हमको, जैसे हमने किसी को बचाया ना, हमने उसको अलग किया, वो मरता अगर पैर के नीचे हमने उसको हटाया, ये शरीर की क्रिया कहेंगे हमने हटाया, बराबर। यहाँ जीव को भाव हुए कौन से, हटाने के, परंतु उसकी मान्यता क्या है, मैं किसी को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो सही मान्यता। और उस ज्ञान में क्या जाना है कि अभी मेरे में ऐसे भाव हो रहे हैं और ये शरीर की क्रिया, तो उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी। अज्ञानी क्या करता है, अभी उसके अभी अज्ञानी किसी उस पर कोई संकट आया है, तो संकट आया है ये कर्म फल चेतना, ये कर्म चेतना में राग द्वेष ले लेना, मैंने वो आगे वाली बात बताई, कर्म का फल लेने वो सुख दुख हो रहा है ना उसको, तो अपने को मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव चलता है उसका। हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन तो और क्लैरिटी होगी। तीन प्रकार की चेतना बताई, एक है कर्म फल चेतना, यहाँ कर्म का अर्थ होता है राग द्वेष, दूसरा है कर्म चेतना और तीसरा है ज्ञान चेतना। अब हम पुस्तक में से पढ़ेंगे और क्लैरिटी होगी। देखिए, एकेंद्रियादि पर्यायों में यह जीव दुखी है। अब हम देखते हैं वनस्पति है वायु है वो दुखी है कि सुखी है, मिथ्या दृष्टि है तो दुखी ही है, दुखी क्यों है, राग द्वेष चल रहे हैं और वहाँ उनके तो संयोगों में भी ऐसे कुछ है ना, कुछ कर नहीं सकते, ये भी बात है ना वहाँ। तो कहते हैं एकेंद्रिय पर्याय में यह जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वह नहीं करता, कर ही नहीं सकता, तो क्या करता है, कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता है, मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ, ये सभी अकेले एकेंद्रिय की बात नहीं है, पंचेंद्रियों की भी, मनुष्यों की भी। क्या कहते हैं, क्या करें, हमारे कर्म बहुत आकरे हैं, हमको भोगना पड़ता है, तो अपने को किस रूप फील कर रहा है, मैं दुखी हूँ। जब मान लिया मैं दुखी हूँ, अब आगे चलकर बताए कोई उसका उपाय भी करते हैं, क्या उपाय करते हैं, उसको हटाने की, जो कोई दुख रूप बात है, दुख रूप संयोग है, उसको हटाने की कोशिश करता है, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे वो तो पुद्गल की बात है, परंतु इसके उत्पन्न हुए ना भाव, इसको मैं हटाऊं दूर करूं, यानी वो देश उत्पन्न हुआ, जो सुख रूप लगता है उसको ले लूं, वो राग उत्पन्न हुआ, ये राग द्वेष करता है और अपने को उस रूप फील करता है। हमने जो क्रोधी की बात की थी, क्रोध रूप राग रूप द्वेष रूप अनुभव करता है, उसको कहेंगे ये कर्म चेतना है। एकेंद्रिय आदि जो जीव है या पंचेंद्रिय होकर भी जैसे कोई भी दुख तो लग रहा है और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ बस इतना ही अनुभव कर रहा है, उससे अपना भिन्न अस्तित्व नहीं जानता है, तो वो कर्म फल चेतना वाला। कर्म चेतना में कैसे लेना, उपाय कर रहा है, ये कैसे उपाय कर रहा है अभी तक खोटे, क्योंकि सुख दुख का कारण किसको माना है, किसी पर व्यक्ति को माना है, किसी ने अपने सुख का कारण किसको माना, कोई कल्पना में उसने भगवान उत्पन्न कर दिया अपने कल्पना से, यहाँ पर उसका चित्र भी बनाया और मान लिया कि इसने मुझे सुखी बनाया, तो फिर उसके पीछे वो दौड़ता चला जाता है, या अपने दुख का कारण मान लिया और फिर वो भगवान को कहेगा हे भगवान मेरा दुख दूर कर दे, ये जो भ्रांति चलती है ना उसकी, ये सब मिथ्या दृष्टि की, ये सारी कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, ये दुखी है, क्यों दुखी है इसका कारण पता नहीं है, दुख दूर करना चाहता है, दुख का कारण पता नहीं है, इसलिए दुख दूर करने का उपाय कुछ अन्य अन्य करता है जो उसके मन में आवे ऐसा, फिर भी वो सुखी नहीं होता। तो इसमें से सुख प्राप्ति का उपाय क्या था, अपना स्वरूप पहचानता, ज्ञान के द्वारा ही उसको ये सुख की प्राप्ति होती, परंतु वो उसने कभी की नहीं, तो हम देखते हैं इसको कि एक इंद्रिय जीव है, कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करते हैं। उस जीवों की चेतना, चेतना यानी ज्ञान, किस में अटकी है? मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी है। अपना चैतन्य उपयोग कहाँ अटका है उसकी बात चल रही है। ज्ञान तो है इसके पास, अटका किस में है? अरे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी, उसी में अटका है। उसको कहेंगे कर्म फल चेतना। अब कहते जो जीव इन दुखों को निवारण, दुखों का निवारण करने ने दुखों को दूर करना एवं सुख की प्राप्ति के लिए, तो आप कहेंगे हम आप सब प्रयत्न कर रहे हैं ना, हम भी मोक्ष में सुख है और उसके प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं। हाँ, परंतु ये क्या कर रहा है? उसने तो सुख किसे कहना ये भी उसे सही मालूम नहीं है, उसका उपाय क्या है वो भी मालूम नहीं है। इसलिए कहते हैं अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है। राग द्वेष अज्ञानी है तो मिथ्यात्व चल ही रहा है और मिथ्यात्व के कारण उसके राग द्वेष भी चल रहे हैं। परद्रव्यों को परिणमाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनका विशिष्ट परिणमन करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानता है। तो ये उसके हाथ की बात नहीं, क्योंकि पर हमने कल पढ़ा था एक वाक्य मुक्त मार्ग प्रकाशक में से पढ़कर सुनाया था, याद है किसी को? अनादि निधन ऐसा कहा था। अनादि निधन वस्तुए भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, और ये जो पर को परिणमाने का भाव है वो भाव को ही निगोद का, निगोद में जाएगा कालांतर से, परंतु अभी कैसे भाव कर रहा है? जैसे निगोद पर्याय में जाना पड़ेगा। कौन से भाव? पर को परिणमाने के भाव। तो क्या समझना है? हम पर को नहीं परिणमा सकते, क्यों? अरे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमित होता है, तो सब अपना अपना परिणमन करे तो हमें उसके परिणमन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई द्रव्य निठल्ला बैठा नहीं है बिना परिणमन का, हर समय उसकी पर्याय होती रहती है। तो कहते हैं परिणमाना चाहता है, इच्छा है इसकी, इसके इच्छा से तो कोई बातें नहीं होती। देखो हम इच्छा तो करते हैं और परद्रव्यों का परिणमन होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे हाँ हमने इच्छा की रोटी बनाने की, रोटी बन गई। देखो यहाँ चौभंगी लगती, चार भंगी। कैसे? कोई जीव इच्छा करता है, हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी देखेंगे कि मैंने इच्छा की कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसमें चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती, पांचवी हो तो आप बताना। तो मैंने इच्छा की मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए और वह नहीं बनी, एक पॉसिबल। मैंने इच्छा की मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए और वह बन गई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। मैंने इच्छा नहीं की थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, फिर भी वो हुई, और मैंने इच्छा भी नहीं की और वो हुई भी नहीं, ये चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको चौभंगी कहेंगे, फोर पॉसिबिलिटीज। तो जब जब हम इच्छा करते हैं और कार्य नहीं होता तो क्या करें? हमने तो सब कोशिश की परंतु ये भगवान के हाथ में है। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, ठीक समय पर आ गए, नहीं आते तो बहुत कुछ हम कुछ नहीं कह सकते, फिर उसको हमने बचाया है ना। और कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, सब कुछ वो ट्राई जो कोई करनी है करनी, फिर भी वो उसकी आयु समाप्त है। हमने सब की थी परंतु क्या करे, भगवान की इच्छा। जो इच्छा वाला होता है वो भगवान नहीं हो सकता। मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था तो सब लोग इकट्ठे हुए, तो हमारे पद्धति वो काले लेटर से वो खत लिखते हैं सबको, कालोत्री सुख हो
गुजराती
तो अभी ऐसे सब कोई ना कोई अपने बुद्धि से अभी क्या लिखना, मैटर कैसा तैयार करना, सब लिख रहे थे। तो एक ने लिख के दिया ऐसे ऐसा हो गया, इस कारण से देहावसान हो गया, क्या करें, भगवान की
नहीं
नहीं भगवान की इच्छा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने रोक दिया, ये भगवान की इच्छा विच्छा कुछ नहीं होती, आप विकराल भगवान का अपमान मत करना। तो उसमें भी लिखते हैं अरे क्या करे, कर्म गति के सामने इलाज नहीं। ये कुछ तो लिखना है ना, औपचारिक कुछ से सुना होता है कहीं से, अन्य मति की विकल्पना होती है, वहां लिख देते हैं ऐसा। परंतु हम छोटे छोटे वाक्यों में भी हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, बात ख्याल नहीं आती। तो इच्छा हो वो भगवान ही नहीं है, वो क्यों इच्छा करेगा किसी को मारने की और किसी को रखने की।
आपने अभी बोला ना कि किसी को परिवर्तन करने का भाव करने पर हम निगोद का भाव रहता है, तो वो तो बच्चे के लिए तो हमने बार बार ऐसे कहते हैं उसको चेंज करना, उसको चेंज करना है। और कल आपने जब मरीज का भी बात बताया, मरीज के बात हम सभी लोग जानते हैं कि मरीज ने इतना ही गर्व किया तो इतना सारा साल
ऐसा ही
तो बार बार गर्व करते रहते हैं।
देखो देखो आपका ऐसा प्रश्न है, हम तो बार बार गर्व करते हैं, परिणमाना चाहते हैं। देखो पहले में पहले मैं परिणमा नहीं सकता, इस बात का निर्णय करना है, अभिप्राय में लेना है, श्रद्धा में लेना है। श्रद्धा में लेने पर भी हमें तो ऐसा भाव उत्पन्न होगा, पुत्र के प्रति स्नेह है तो ये इसका कल्याण हो, तो हम कहेंगे अरे अभ्यास बराबर कर, ये सदाचार से रहो, ये ऐसी बात ये रीति नहीं है, ये तुम्हारी भूल है, कहने का भाव आना अलग है और हम उसको परिणमा सकते हैं, ये मान्यता अलग है। मैंने पंखे का भी उदाहरण दिया था कि पंखा चल रहा है, आपने बटन ऑफ कर दिया, फिर भी वो घूम रहा है, वो घूम रहा है कि बंद हो रहा है,
बंद होने के लिए
घूम रहा है। कुम्हार का चक्का भी आपने देखा होगा, वो पहले ऐसे लकड़ी लेके खूब जोर से घुमाता है, फिर क्या करता है, लकड़ी छोड़ देता है, छोड़ देता है और फिर वो मटका बनाता है। यानी वो उसके करने का हाथ उसने छोड़ दिया, फिर वो घूम रहा है कुछ काल तक। ऐसे ही हमारी करने की बुद्धि, करने की बुद्धि का अर्थ होता है कर्तृत्व बुद्धि यानी मिथ्यात्व, मैं कर सकता हूं ऐसी मान्यता है ना, उसको कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। समझना बराबर, बुद्धि शब्द है ना, तो कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ है मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूं ऐसी मान्यता, खोटी मान्यता, उसको क्या कहा, कर्तृत्व बुद्धि। और करने का भाव यह है चारित्र मोह, ये राग भाव है। कर्तृत्व बुद्धि छूट गई है, ऐसे ज्ञानी चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती जीव है, गृहस्थ है, तो उनको भी बच्चों को बताने का भाव आएगा, व्यापार धंधा करने का भाव आएगा। अरे राजा होगा और कोई संकट आता है तो वो संकट निवारण करने के लिए युद्ध भी करेगा, पांचवे गुणस्थानवर्ती भी, तो वहां कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करता है, परंतु करने का वैसा भाव आता है। तो भाव आना अलग बात है और मिथ्या अभिप्राय अलग बात।
तो जो तीर्थंकर भगवान के दो भाव पहले जो सभी जीव कर्म शास्त्र से का भाव करते हैं वो भाव है।
हाँ देखो आपका फिर प्रश्न है, तीर्थंकर का जो जीव पूर्व भाव में जिसने ऐसे भाव आए कि सब जीव इसको जाने, तो उसके
वो ये जीव को आसन जैसे हम कहते हैं कि एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, फिर भी तीर्थंकर का ही आत्मा वो ऐसे भाव करते हैं।
क्या भाव किया उसने कि ये बात सब जीव जाने, ये बात है ना, तो ये ऐसी अलौकिक बात है सब जीवों को जाने, ऐसा जो भाव आया वो शुभ भाव है। परंतु कर्तृत्व बुद्धि नहीं थी कि मैं ये कर सकता हूँ, करना चाहिए, क्यों, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं होता। तीन काल में ये हो सकता है, चौथे या पांचवे या छठे सातवे गुणस्थान वर्ती हो तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चालू हो जाता है, बिगिनिंग, और फिर वो भवन तक चलता है, फिर आठवें गुणस्थान तक वो उसका बंध भी चलता रहता है। कर्तृत्व बुद्धि पहले छूट जाती है, मैं उपदेश देके दूसरे को समझा सकता हूँ, सकता हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि, ये छूटने पर भी दूसरे को समझाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा। कुंद कुंदाचार्य ने इतने पांच परमागम लिखे, वो तो मुनि अवस्था के हैं, गणधरों ने बारह अंगों की रचना की, तो वो तो मुनि है, तो वहां तो कोई कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। नहीं मैं नहीं लिखूंगा ये तो कैसा इतने काल तक लोग समझे, ऐसे कोई नहीं, परंतु सहज भाव आता है कि ये बात अलौकिक बात सब जीव समझे, तो उपदेश भी देते हैं, ग्रंथों की रचना भी करते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी जिसको आत्मा की ही बात सुहाती है, बारंबार आत्मा का अनुभव करते हैं, जब अनुभव में तो सतत नहीं रहा जाता तो क्या करेंगे, अनुभव के काल में नहीं है तो क्या है? उसी के बारे में सोचेंगे, सोचते सोचते कभी लिखेंगे, लिखते लिखते अमृत चंद्राचार्य जैसे होगी तो उसमें से काव्य रूप भी रचना करेंगे, वहां कुछ उनको अपना कवि तो नहीं दिखाना था, वो सहज अंदर से ऐसे भाव उमड़ आते हैं कि ऐसी रचना सहज हो जाती है। मैं करूं करूं कह के ऐसी कोई रचना नहीं हो सकती, समझ में है ना? तो करने की बुद्धि यानी मिथ्यात्व छूटने पर भी कुछ काल तक, कुछ काल का अर्थ है चौथे पांचवे और छठे गुणस्थान, तीन गुणस्थानों में, ये समझाने का भाव मुनि के, जो हम चौथे पांचवे वाले उनको मुनियों के दर्शन करने के भाव, यात्रा करने के भाव, ये तो यात्रा करने का भाव तो मुनि को भी आएगा, देव वंदना देव स्तुति वो भाव तो उनके भी आते हैं, उपदेश देने का भाव, परंतु ये मेरी क्रिया है, ये शरीर की, अभी उपवास वगैरह कितने करते हैं मुनिराज, तो मासोपवासी भी कहता है ना, एक एक मास का उपवास, या जो कोई बाहुबली ने एक साल तक वो तप किया था, वर्षी तप नहीं कहते उसको, कहते हैं कि उन्होंने एक ही जगह मैंने यहाँ से हिलूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वहां खड़े थे। तो ऐसी जो बातें होती है ना, तो ऐसे भाव आते हैं, और हम करते हैं तो क्या है, हम जबरदस्ती है ना करना चाहते हैं, परंतु यदि वहां तत्व का चिंतन तत्व का निर्णय नहीं हो, ये नहीं करना ये बात नहीं चल रही, वो अपनी क्रिया ही नहीं है। तत्व के निर्णय पूर्वक पहले में पहले करने योग्य बात क्या है कि तत्व का निर्णय वो कैसे होगा, तत्व विचार के काल में होगा। वो पहले पढ़ के सुनाया था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कि देखो तत्व विचार की महिमा क्या, तो कोई जीव तो अरिहंत अधिकों की भक्ति बहुत करते हैं और फिर स्वाध्याय बहुत करते हैं, व्रत आचरण करते हैं, उपवास आदि तब बहुत करते हैं, फिर भी उनको सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है, और कोई जीव इसके बिना भी सम्यक तो प्राप्त करते, क्यों, क्योंकि वे तत्व का विचार करते, तो क्या वे स्वाध्याय नहीं करते, नहीं करते हैं सब, परंतु उसमें से तत्व को सुनकर उस पर निर्णय करते, विचार करते, परीक्षा करते, वही बात सबसे महत्व की बात है। तभी हम आगे देख रहे थे
तो सम्यक तो भाव भाषण में आ जाना चाहिए, अगर वो भाव भाषण में आ गया तो बाकी की क्रिया तो ना करो।
आपका प्रश्न है सम्यक तो भाव भाषण में आना चाहिए, तत्वों का भाव भाषण होना चाहिए, तब सम्यक तो होगा,
तब होता है,
क्योंकि सम्यक तो की परिभाषा क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, कोई बात नहीं, तत्वों का अर्थ यानी तत्वार्थ, तत् यानी वह, त्व यानी उसका पना, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थों का उस रूप जो उसका भाव, जिस तत्व का जो भाव हो उसको कहेंगे तत्वार्थ, और उसका श्रद्धान का अर्थ क्या है, वो जैसा है उसको वैसे अभिप्राय में लेना, कैसे लेना है, जैसे हमने देखा जीव तत्व उसकी तो यहां बात हुई थी, अजीव तत्व, अभी हम आश्रव तत्व की बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आश्रव तत्व को जानना कि नहीं जानना, श्रद्धान करना कि नहीं, कैसे करना है, जैसा है वैसा है नहीं कैसा,
तत्व के निर्णय,
हाँ परंतु उसका स्वरूप क्या है, आश्रव का स्वरूप क्या है,
गुण है वो,
हाँ
कर्मों
का ना, वो तो परद्रव्य है, हमें आश्रव का जो का त्यों श्रद्धान चाहिए, जो का त्यों जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना है श्रद्धान में, तो आश्रव यानी पुण्य पाप के भाव है, शुभाशुभ भाव है, मोह राग द्वेष है, उसको कैसा एक्सेप्ट करना है, ये दुखरूप भाव है, स्वयं दुखरूप है, दुख का कारण है, क्योंकि फिर उसके निमित्त से कर्म आएंगे, फिर वो भविष्य काल में उदय में आएंगे, जब उदय में आएंगे तो फिर राग द्वेष हो गए, तो राग द्वेष स्वयं दुख रूप है। यहाँ कहा है छोड़ाला में, राग आदि प्रकट ये दुख देन, राग और द्वेष आदि में सब समझना, पुण्य पाप शुभाशुभ भाव सभी कैसे दुख देने वाले है। जिस काल में राग की उत्पत्ति है उस काल में आकुलता चल रही है और वही दुख है, तो राग आदि ये प्रकट, प्रकट यानी वर्तमान में दुख देने वाले है, प्रत्यक्ष दुख रूप भाव है। और इस जीव की भूल क्या है, रागादि प्रकट ये दुख देन तिनको ही सेवत गिनत चैन, उसी को सेवते हुए ने उसी को करते हुए ये सुख मानता है, चैन कर ये शुभ भाव में तो उसको सहज रुचि है, प्रसन्नता है, और उसी को करते करते, कोई कोई तो अशुभ भाव में ही प्रसन्नता मानते हैं, नहीं मानते है? परिग्रह को इकट्ठा करते हुए उसके प्रति ममत्व भाव रखते हुए कितनी सुख की नींद आती है हमें, है ना। हाँ
उसमें ही बिजली।
अच्छा अभी क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करनी है, हम कहाँ भूले हैं मान्यता में, पहले में पहले कितना पैसा इकट्ठा किया उसको परिग्रह नहीं कहते, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होगा तो उसके ना मिथ्यात्व है ना अनंतानुबंधी है, उतनी मात्रा में उसका परिग्रह कम हुआ है। परिग्रह के हमने दो भेद देखे थे, याद है किसी को परिग्रह के दो भेद? हाँ श्रुति, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में पुष्पाबेन आपको मालूम है परिग्रह के नाम, हमें परिग्रह कम करना है तो पहले में सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा आपको पता है? नहीं पता। अच्छा हाँ हाँ बोलिए। मोह यानी मिथ्यात्व, सबसे बड़ा परिग्रह कौन है? पहले में पहला नाम है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह इसे किसी को पता ही नहीं है। परिग्रह का प्रमाण हमने किया कर दिया, हमने सब कुछ प्रमाण कर दिया परिग्रह, क्या क्या किया हमने, 10 जोड़ कपड़े, इतने लिमिट रखी, हम दो ही कार रखेंगे, एक ही घर रखेंगे, इतना हमने परिग्रह का प्रमाण किया, अभी ज्यादा नहीं हमको रखना है, बाकी हमने सब दान कर दिया, इसको प्रमाण नहीं करेंगे, कहेंगे क्यों, ये मिथ्यात्व वाला भूत तो रखा है वैसा है तो उसके ये बाह्य ही हमें परिग्रह लगता है, बाह्य परिग्रह भी है परंतु अंतरंग में जहाँ परिग्रह है तो वो पूरा ही परिग्रह ही हम कहेंगे। देखो पहले में पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया और लोभ, और कौन से रह गए?
श्रुति
बोलो, हमने अभी तक 5 ही देखे, अंतरंग 14 परिग्रह है, लोभ लिया ना, मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, अब राग हो गया, राग द्वेष में आ गए, क्रोध और मान राग द्वेष में आ गए, माया और लोभ राग में आ गए, आप कहेंगे हाँ हाँ, नौ कषाय कौन से, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये नौ कषाय है। अब कोई बहुत हसमुख है ना, हंस रहा है, जैसे सर अभी तो ये हास्य क्लब वगैरह निकले ना, ये हम इंडिया में बहुत चलता है, घंटे तक जाके हंसते रहने, लाफ्टर क्लब, लाफिंग क्लब, लाफ्टर क्लब जो कुछ कहो, उससे क्या होता है अपनी हेल्थ अच्छी रहती है। अपने को क्या माना, मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर रूप हूँ, अरे तो हास्य को हमने अच्छा माना कि बुरा माना? बुरा माना। कोई रोता है कोई हंसता है, हम किसको अच्छा मानते हैं? हंसने वाले को, पर वो कषाय है, हम ख्याल आता है कि नहीं, हमें वो कषाय है कि नहीं, और वो परिग्रह है। देखो ये कितना हसमुख है और दूसरों को भी हंसाता रहता है, तो क्या है वो कषाय है। जैसे हम गए थे कहीं यात्रा में, कहाँ गए, श्रवण बेलगोला जाके आए, किसी को पूछा क्या देखा, अरे क्या पत्थर है मूर्ति कैसे, हमने पूछा किसी को क्या पत्थर है, इतना सफेद एक अखंड, बीच में कोई भंग नहीं, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, एक अखंड पत्थर देखा हमने। दूसरे को पूछा आपने क्या, अरे ऐसे हसरी मूर्ति है, ऐसे हसमुख, गुजराती हसमुख कहते हैं, मराठी हम हसरी कहेंगे, हंसती हुई मूर्ति है, यानी अभी भगवान को हास्य कषाय बाकी है नहीं है। हमारे वहाँ एक बार किसी ने पूछा, और चलो चलो उस मंदिर में क्या हो रहा है, वो अमी झरना पसीना आ रहा है भगवान को। अच्छा, तो 18 दोष से रहित नहीं हुए अभी, हमें तो 18 दोष के नाम भी नहीं मालूम। आपको मालूम है अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, ना उनके कोई जन्म है, ना मरण है, ना क्षुधा तृषा शीत उष्ण शीत दंश मशक नागने अरति, ये सब जो बातें उनके होती ही नहीं है, और हमने उनका स्वरूप ही जाना नहीं है। तो आप क्या किया, हमने अम नमो अरिहंतानम के हमने जाप किए, उनका स्वरूप जाने बिना। देखो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में लिखा है, क्या लिखा है कि हम अरिहंतों को आदियों को नमस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि वे वीतराग विज्ञानमय है, और हम उनको नमस्कार उनका शरीर देखकर नहीं करते, उनके वीतराग विज्ञान अभिज्ञान यानी केवल ज्ञानी है सर्वज्ञ है उसको हम नमस्कार करते हैं। मुनियों को भी क्यों नमस्कार करते हैं, उनमें भी वीतरागता अधिक मात्रा में है और उनके भी आत्मज्ञान है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो हम तो नहीं नहीं यहाँ चमत्कार है ना, तो हम चमत्कार को नमस्कार होता है आजकल।
गणपति ने दूध पिया।
अच्छा,
इधर के
आपने पिलाई कि नहीं पिलाया? पिलाई पिया था उसने,
5-6 साल हो गए
वो पिलाया, उसने पिया था कि नहीं पिया था?
वो खलास हो गया,
खलास हो गया, क्योंकि वो तो टीवी पर हमारे दिखा था, वो जो ऐसे कोई लाइन होती है ऐसे डिजाइन वाली पीछे से पूरा ना नीचे बहता था। इंडिया में तो वो तो गणपति के मंदिर वाले पुजारियों ने हाथ जोड़कर कहा था भक्तों से, अरे बाबा ये जो दूध इतना बह रहा है नीचे, ये कोई पीता बीता नहीं, वो स्वयं पुजारी कह रहे थे। ये तो ये अंधश्रद्धा ऐसी श्रद्धा होती है, हमारे तो कहीं कहीं अरे हमने गाड़ी में बैठे तो सामने वो ऐसे कोई इतना सा होता है ना प्लास्टिक, उसको भी पिलाया। अच्छा, किसी ने तो कैलेंडर को भी पिलाया, गणपति के कैलेंडर। हम जैनी तो बचे रहे क्योंकि हमारे भगवान कोई आहार नहीं लेते।
नहीं, मगर यहाँ अमेरिका में भी लाइन लगी थी,
कहा
टेम्पल में, जो गणेश टेम्पल है।
अच्छा, आदिनाथ को तो नहीं पिलाया ना महावीर को? अच्छा,
गणेश टेम्पल में सब गए थे पिलाने,
नहीं तो महावीर को पिलाते तो और आफत आ जाती।
अगर ये ईसाई हम लोग सोचते तो परसों हम सिद्धाचलम गए थे, तो बाद में तो वही भी वही होता ना। सिद्धाचलम में हमें लोगों गया था परम से दर्शन करवा, इतनी बड़ी झाकड़ हती तो आखी फ्लोर एवरी वेर तमने पानी 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 लागे, बड़ी मूर्ति तब कोई पण दर जगह जो एटलो बधो भेज हतो त्यां, के एटली तमने एम लागे के अहीं कोके पानी ढोळी नाख्युं छे, पछी मैं पेला ने पूछ्युं तो के इतनी भाप होती है तो इसमें से ये सब पानी 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 हो जाता है,
यानी ऐसे पानी अंदर से बाहर निकलता है, वो संगमरमर है जो अंदर एब्सॉर्ब होता है फिर बाहर आता है। तो आमी जरा
हमारे मंदिर में कोई ओकेजनली सारा अमी झरना होता है।
हाँ, तो क्या होता है वो?
कभी कभी
आप साइंस वाले लोग हैं, वहाँ कोई विज्ञान को नहीं पूछने जाते
हैं। कभी कभी वो केसर का ऊपर से ही कुछ बात,
कुछ नहीं, ये सब क्या है उसके लिए कोई भी साइंटिफिक वहाँ आते होंगे, तो उसमें आपको क्या मिला? तो उन्होंने उस भगवान की भक्ति की इसलिए वो बढ़ गई क्या? मान लेते हैं आपके कहने के अनुसार स्वर्ग के यक्ष कोई आए और देव आए और उन्होंने पूजा की, तो आप भी भक्त है और वो भी भक्त है, तो उन्होंने भक्ति की इसलिए भगवान बड़े हो गए? किसी ने भक्ति नहीं की तो भगवान बड़े नहीं हुए। हम कहीं कहीं देखते हैं कोई नाग आता है वहां सामने नमस्कार करके चला जाता है, हाँ यहाँ नाग भी आते तो भगवान की महिमा क्यों? तिर्यंच भी आते, अरे पर समोसरण में तो सभी आते हैं ना, देव आते हैं, तिर्यंच आते हैं, मनुष्य आते हैं, तो हमें तो बाह्य की महिमा लगती है। वहाँ कौन कौन जाता है नमस्कार करने के लिए? जहाँ भीड़ है वहाँ हम भी चले जाएंगे,
कतार में।
हाँ, कतार में क्यों? भगवान की बात छोड़ो, हमारे जैसा कोई आता है जिसके पीछे ज्यादा लोग है पागल की तरह वहाँ सब सब, अरे क्या है तो देखो, ये देखने के लिए कि लोग क्यों उसमें उमड़ पड़े हैं, इसलिए देखने के लिए ये भी ज्वाइन होता है उनके, ये तो सब साइकोलॉजी है। हाँ, चलेंगे आगे।
हाँ, वो 15 परिग्रह 9 कषाय और
15 परिग्रह नहीं, देखो परिग्रह के 2 भेद, अंतरंग 14 और बहिरंग 10। हाँ, तो अंतरंग 14 में सबसे पहले है मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया और लोभ, और 9 नौकषाय। याद रखने के लिए 1 मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 नौकषाय, कितने हुए? 14। अब बहिरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र और पात्र, ये 10 परिग्रह है। तो
वस्त्र,
पात्र, बर्तन, कपड़े, बर्तन, ऐसा लेना। अभी इसमें और भी, इसमें गाड़ी का नंबर नहीं आया, कोई रथ नहीं लिखा, ये सब उसमें, ये उपलक्षण रूप से है। बाह्य की जितनी बातें सभी उसमें परिग्रह में आ जाएगी। देखो ऐसा है ना, जिसके मिथ्यात्व हो गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ कम हुए हैं, ऐसा कोई गृहस्थ भी है, उसके तो बाह्य में परिग्रह हो गए। जैसे भरत चक्रवर्ती है, उसके तो चक्रवर्ती की सभी विभूति बाह्य में है, अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं है और क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, अनंत अनुबंधी।
10 बोला ना,
10
बाह्य परिग्रह,
बाह्य में
क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, पात्र और
धन धान्य। तो क्या कहते हैं, पहले में पहले चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती का मिथ्यात्व और जितने कषाय चोपड़ी गई है, परंतु बाह्य में उसके परिग्रह है, चौथे के भी और पांचवे वाले के भी। मुनिराज जो है उनके बाह्य परिग्रह नहीं होते, ना ही अंतरंग होते हैं। देखो अभी हम अन्य की बात करेंगे, जिसको बाह्य परिग्रह नहीं है उसको अंतरंग परिग्रह है कि नहीं है? होगे भी, नहीं भी होगे, दोनों पॉसिबल।
ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि मुनि राज है।
नहीं, मुनि की बात अभी नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा कह रही हूँ जिसके बाह्य में कोई परिग्रह नहीं है, ऐसा कोई जीव है उसको अंतरंग में परिग्रह है क्या नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे घर में यहाँ ऊपर मनी प्लांट रखा है, उसको कितना परिग्रह है? अंतरंग है कि नहीं? सभी है। अच्छा, उसके कौन सा गुणस्थान चल रहा है? एक इंद्रियों को गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? मिथ्यात्व ये पहला गुणस्थान, तो मिथ्या दृष्टि है वो, तो वहां मिथ्यात्व है कि नहीं है? क्रोध, मान, माया, लोभ, यहाँ गाड़ी अटकती है
क्योंकि दिखता नहीं ना।
ये बाह्य शरीर की क्रिया, शरीर को आप देख रहे हैं, वो जीव के परिणामों को आप नहीं देख रहे हैं। और यहाँ जीव के परिणाम के अनुसार शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, इसलिए लगता है कि ये क्रोधी है। पहले भी मैंने बताया था, कोई जो सेठ है और वो अपने नौकर को गालियां दे रहा है कुछ, उस नौकर को बहुत गुस्सा आ रहा है, बाह्य में चेहरा कैसा दिख रहा है? शांत, यस सर, यस सर कर रहा है ना, और अंदर से उबल रहा है वो तो क्रोध से। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बाह्य अपीयरेंस कुछ उसके परिणामों की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे एक्टर्स तो कुछ ना कुछ बाहर में दिखाई दे दिखाते है, अंतरंग में तो खुश खुश है, अरे पैसा मिल रहा है उनको इतना। तो यहाँ कहते हैं ये, अभी एक इंद्रिय की बात छोड़ो, कुत्ता बिल्ली उसका तो एंगर आप देख सकते हैं ना, उसमें बाह्य में कितना परिग्रह है? चूहा है, चिड़िया है, क्या है परिग्रह है क्या? यहाँ जो हिरण है, क्या है परिग्रह उनके? या उनके पास कोई धन धान्य है क्या? कोई बर्तन बिर्तन है, वस्त्र है? तो हमें तो कोई उनके परिग्रह नहीं दिखाई देता, तो उनके है कि नहीं है? तो मिथ्या दृष्टि तो उसके सारे ही परिग्रह है, तो उसको परिग्रह ही कहेंगे। निष्परिग्रह कब कहेंगे? जो मुनिराज है, मुनिराज की भी संज्वलन है हो, तो जब तक संज्वलन है तब तक बाद में हम कहेंगे, परिग्रह संज्ञा भी कहेंगे दसवें गुणस्थान तक, फिर भी हम उनको निष्परिग्रह कहेंगे। क्यों? उनके ना मिथ्यात्व है, 3 कषाय चोकड़ी भी नष्ट हुई है, और उतने मात्रा में, उतने परसेंट में हास्यरति वगैरह अन्य भी कषाय उनके कम हुए हैं। अब वेद का उदय चल रहा है, परंतु ऐसा कोई, क्योंकि पांचवें गुणस्थान से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा है और उसका महाव्रत चलते हैं, तो ऐसे कोई उनके परिणाम में भी खोट नहीं है और कोई बाह्य में उनका ऐसा आचरण में भी खोट नहीं है। तो हम उनको क्या कहेंगे, निष्परिग्रही। दस परिग्रह में से कौन कौन से उनके बाह्य में है, मुनिराज है हाँ, अंतरंग में तो नहीं है। तो जिसके अंतरंग में नहीं उसके बाह्य में रखने का भाव ही नहीं आया, तो उनको हम कहेंगे निष्परिग्रही होते, क्योंकि हमने मुनिराज का ही स्वरूप नहीं जाना तो हम भगवान पे कैसे करेंगे। जो बातें मुनि में नहीं है वो भगवान में कैसे हो सकती है, ख्याल है ना, ये कॉमन लॉजिक है। तो ये परिग्रह की बात हम कहेंगे। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये परिग्रह की ये हम तीन प्रकार की चेतना जो देख रहे थे उसमें हमने कर्मफल चेतना देखी, कर्म चेतना देखी, और अब ज्ञान चेतना की बात देखते हैं कि जो जीव, यानी ज्ञानी के क्या होता है कि ज्ञानी को सुख दुख नहीं होता, ज्ञानी पर कोई संकट नहीं आता क्या, हाँ उसके भी राग द्वेष के भाव तो होते ही यथा योग्य। अभी घर में रहता है कोई राजा है, हमने देखा रामचंद्र जी को भी सीता के वियोग में कितना शोक किया था, लक्ष्मण के वियोग में किया था, तो उसके तो भी सुख दुख के तो भाव तो उसके भी होते हैं। तो जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है, क्या कहते हैं, मैं तो ज्ञान मैं हूं, राग ये जो कोई राग आदि परिणाम है शुभ अशुभ भाव वो विभाव भाव है, वो मेरे से भिन्न है। और वहां जो कोई बाह्य संयोग है सुख दुख के जो कोई परिणाम है वो भी मेरे से भिन्न है। इन तीनों को अलग अलग पहचान लेता है, बाह्य में देखने वाले को उसमें कोई चेंज नहीं दिखा, जैसे अज्ञानी बाह्य में वर्तन कर रहा है ऐसे ज्ञानी का उसकी बिहेवियर आचरण दिखाई देगा। उनके जो अभिप्राय है श्रद्धा है उसमें जमीन आसमान का भेद है, किससे कार्य होता है क्या है, किसने मुझे, अज्ञानी माँ तेरे कर्म ने मेरे को सुखी दुखी कर दिया, कोई मानेगा अरे ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, कोई कहता अभी थोड़ा दुख का अनुभव करो फिर सुख होगा, तो हम भी ऐसा कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी थोड़ा दुख करो, दुख का अनुभव करो, क्या तब कर रहे ना, थोड़ा दुख सहन करो फिर आपको सुख होगा, क्या ये सही है कि नहीं है। जो तप में दुख मानता है ये उसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, क्यों, मुनियों के जो तप होता है वो तो सुखमय दशा है क्योंकि अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव चलता है, मोक्ष परिपूर्ण सुख है, तो मोक्ष का मार्ग भी सुखमय ही होगा। यदि हमने मुनि जीवन को दुखमय मान लिया है तो ये हमारी मुनि संबंधी मिथ्या मान्यता है। हम क्या कहते हैं, अरे बिचारे इतने ठंडी में बरसात में कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, परंतु मुनि जीवन का पता होता अरे वो तो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे और वो सही जान रहे कि ये सारे बिचारे है ना राग द्वेष में जल रहे। ज्ञानी दुनिया को पागल कहता है क्योंकि वो दुनिया है ही पागल पैसे के पीछे, और दुनिया कहते ये क्या पागल है, अरे अच्छी कमाई छोड़कर किसके पीछे लग गया ये, तो कहते हाँ वो अपने को पाने में गल गया है इसलिए पागल है, तो ये उसको पागल कहते वो उसको पागल कहते, दोनों ही पागल। और एक पागल दूसरे पागल को कहता है कि हमारे घर में पगले करो पगलों से क्या होगा, घर सुखी होगा, दीवारें हैं। अरे किसी का उपदेश सुनने से तत्व जानने से लाभ होने वाला है, किसी को देखने से या किसी के घर में हम ले जाएंगे तो हमारा घर ये कुछ नहीं है उसमें, ये तो जड़ वस्तु है।
छोटे मोटे आनंद कभी कभी उसके परमाणु तो हमारे
यहाँ आते हैं ना, देखो ये
परमाणु की बात है। अच्छा
परमाणु किसके परमाणु कहाँ आते हैं, ज्ञानी के कहाँ परमाणु होते हैं,
परमाणु
एक बात ऐसा कहते देखो ये जो मान्यता है ना, हम विशिष्ट क्षेत्र में गए वहाँ के वो वाइब्रेशन, ये वहाँ भी चलता है इंडिया में, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके ध्यान करो तो तुम्हारा कल क्या, वहाँ वाइब्रेशन है वो तुम्हारा कुछ, यानी बाहर से हमारा कुछ आने वाला है, निमित्त से कुछ होने वाला है, वो निमित्त भी नहीं है।
तो हम तीर्थ भूमि की स्पर्श न क्यों करते हैं?
किसकी?
तीर्थ भूमि की।
हाँ, सिद्ध क्षेत्र की क्यों स्पर्श करते हैं? क्योंकि सिद्ध क्षेत्र से हमने देखा है, जैसे विदेह गति में सीधा गमन होता है ना, मुक्त होने के बाद उसी एक श्रेणी से, एक प्रदेश की पंक्ति से सीधा वो विराजमान हुए सिद्ध होकर। तो वहां जाने के बाद हमको उन्होंने सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त की, इस बात की हमें याद आती है। हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? उस दिन, तो उस दिन को याद करके हमें अपना कुछ याद है, कोई प्रसंग या शादी का दिन याद करते क्यों? अरे उस दिन हमारी शादी हुई थी, बच्चे का ये, इस दिन ये बच्चा जन्मा था, तो वो दिन को देखे, उस तिथि के बाद द्वारा हम उस प्रसंग को याद करते। वैसे क्षेत्र को वहां जाने के बाद हम उस जीव की याद करते हैं कि जिसने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, और वहां जाने के बाद वो कैसे मुनि हुए, कैसे वो सिद्ध हुए, वो मार्ग क्या है, तो तत्व विचार से हुए। यदि ये हम नहीं लेते हैं, बस हमने वो ये वंदना कर, आपने कितनी बार की? एक बार। हमने तीन बार की। आप कितने घंटे में वो शिखर जी आते? समय शिखर जी हो गया समय। हम जाते थे, हमारे मामा हुए, दौड़ दौड़ लगा के जल्दी आते। मैंने 6 घंटे में की, एक कहते मैंने 9 घंटे में की, क्या घोड़े की तरह एकदम और चढ़ के उतर के आया। यानी उसी में हम अपने यात्रा के, फिर यात्रा में और क्या क्या चलता है ये वहां जाकर। यदि हम देखो, हम वहां जाकर उनसे प्रेरणा लेना चाहते, हम प्रथमानियों की कहानियां भी जो पढ़ते हैं तो उनके द्वारा हम प्रेरणा लेते कि इस जीव ने, अभी आप बात करें ना श्रीमद जी के कोई अपूर्व अवसर वाली वो ड्रामा की, तो उसको देखकर हम उस जीव की और उसके जो पुरुषार्थ किया उसकी याद, हम उसके द्वारा स्वयं प्रेरणा लेना चाहते। परंतु सिद्ध क्षेत्र है वो, वहां से कोई परमाणु आते हुए मेरा भला करते ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तीन ऐसे मिथ्या तो होगा तो ये और डूब गया है जी। कोई ज्ञानी के परमाणु विरमाणु नहीं होते और ना ही कोई घर को सुधार देते, ये सब मिथ्या भ्रमणा है बेन। ये मिथ्या तो है, नया नया फैशन लेकर आता है भाई, आपने सुना नहीं है? आजकल वो वास्तुशास्त्र भी चलता है, फेंगशुई चलती है, ये तो नया, जैसे आपके वेशभूषा और केशभूषा बदलती है, नए नए फैशन आते हैं, मिथ्यात्व भी अपना रूप बदल कर आता है, और ये जीव उसके पीछे पागल की तरह दौड़ते हैं। अपना समय हो चुका है अभी, हम हाँ बोलिए। हाँ,
हम लोग इधर नागेश्वर जाते हैं, पालीताना जाते हैं, शंखेश्वर जाते हैं, शिखर जी सभी शिखर जाते हैं, तो सभी जगह यही लेना है ना कि जिस जो जो जीव जो सिद्ध हुए हैं, हाँ, कि ज्यादा और तीर्थ स्थान पर घूमने से क्या फायदा?
अब देखो, ये सहज भाव आता है किसी जीव को, शुभ भाव, इसको ज्ञानी को आएगा तो वो सच्चा, उसमें से उसको भी शुभ भाव आएगा, ज्ञानी को क्या मुनियों को भी आएगा कि तीर्थ की वंदना करे, परंतु वो जानते हैं कि वो उनके ऐसे भाव आ रहे हैं, परंतु उस वंदना करने से कुछ और ज्यादा वो आगे बढ़ता है ये बात बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में बैठकर पहले में पहले तत्व निर्णय कर लो, सभी तीर्थों की वंदना से बहुत बड़ा शुभ भाव होगा, निषेध नहीं कहीं जाने का, पर ये मान्यता है ना कि मैंने इतने तीर्थ किए और मैंने इतने बार किए, अब मैंने तो 2 बार किए, मुझे और 1 बार समय शिखर जाना, ये जो बात है,
जाते
तीर्थ का दर्शन करो, उसके ना नहीं है, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है वो पहले में पहले जाए। और कोई ऐसे भी होता है वो घर में बैठे, मैं घर में करूंगा, महावीर कौन से अच्छे, अपने गाँव के महावीर जी के, कौन से महावीर अच्छे आपके मंदिर के पार्श्वनाथ अच्छे है, महावीर अच्छे है क्या? वो महावीर जी नाम का एक क्षेत्र है, दोनों सेम है, नहीं नहीं, और पार्श्वनाथ कौन से अच्छे? सब एक, वो कहाँ मानता है ये जो वो विशिष्ट गांव का वो पार्श्वनाथ है, नहीं वो चमत्कार वाला है,
कौन से?
जाना है वो वाले
पार्श्वनाथ, वो वाले पार्श्वनाथ, वो वाले पार्श्वनाथ, वो वाले पार्श्वनाथ। मंदिरों में जाने का निषेध नहीं है, क्योंकि हमें तो भाव आते हैं, चलो यहाँ भी दर्शन कर लो, यहाँ फिर भी वो पार्श्वनाथ क्या है, ये हमने उस बंटवारा कर दिया है, पार्श्वनाथ संकट का हरण करेंगे, शांतिनाथ भगवान शांति देंगे, है ना, शीतलनाथ वो शीतला का दूर करेंगे, और महावीर भगवान ये ऐसा मानते हैं, वो महावीर जी एक नाम एक क्षेत्र है जयपुर के पास, महावीर जी नाम का, वहां जाने के वो पुत्र की प्राप्ति होगी, ये ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसे सब हमने ये सारा यहाँ घोटाला कर दिया, और लोग भी उसके पीछे पागल की भांति दौड़ते रहते हैं, वहां जाकर वो क्रिया करनी चाहिए, वहां जाकर वो क्रिया करनी चाहिए, वहां जाकर वो रात को दीप जलाते, कितनी हिंसा करते, क्या क्या करते, ये बातें सारी लोक मूर्ता देव मूर्ता पाखंड मूर्ता सब चलती रहती, और ऐसे मूर्ता सहित हो तो समय दर्शन नहीं हो सकता। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर और बाकी चर्चा करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।